وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية. یا مشرکین مکہ کہتے تھے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ خود پہلے بات کرے نا. لا یعلمون کس کو کہا گیا؟ مشرکین مکہ کو. اس لیے کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی, ان کے پاس کوئی صحیفہ نہیں آیا تھا, یہ لا علم تھے. اس کا مطلب جس کے پاس کوئی کتاب کا نالج نہ ہونا اللہ کے نزدیک وہ کون ہے؟ لا علم ہے. ٹھیک ہے, ان کو مشرکین مکہ نہیں کہا گیا, مکہ والے یا کافر. پیچھے بھی کیا کہا گیا؟ قال الذین لا یعلمون. لا یعلمون کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہتے تھے ہم سے زیادہ تو کوئی ہے ہی نہیں. ہم دوسروں کو کہتے تھے کہ یہ لوگ تو کیا ہیں, عجمی ہیں. ہم وہ ہیں کہ ہم تو اہل زبان ہیں, ہماری شاعری دیکھو, ہمارا یہ دیکھو. تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے علمی میدان میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعلمون. اس زمانے کی تو شاعری تھی نا, جیسے آج کی سائنس ہے, تو اس زمانے کا بہت بڑا جو نالج تھا نا وہ شاعری تھا, اس میں تو وہ بہت آگے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا یعلم, یعنی کتاب کا علم نہیں ہوتا جب تو وہ لا یعلمون ہی ہے. ہم بھی آج تک اللہ کے نزدیک کیا تھے جب تک ہمارے پاس کتاب کا علم نہیں تھا؟ جاہل. ٹھیک ہے, اللہ کے ہاں علم والا وہی ہے جو اس کی کتاب کا علم رکھتا ہے. لا یعلمون وہ کہتے کیا تھے؟ لولا یکلمنا اللہ, ہم سے کیوں نہیں اللہ بات کرتا؟ آپ سے جو بات کر رہا ہے تو ہمیں اللہ بتائے پہلے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, تب ہم آپ کو مانیں گے. او تاتینا آیا, یا ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی, موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی باتیں نا پچھلے لوگ بھی کرتے رہے. وہ بھی اپنے پیغمبروں کو یہی کہتے تھے, ہمیں کوئی نشانی دکھائیں, ہمیں اللہ سامنے دکھائیں. ہم نے پڑھا ہے نا کہ ہمیں اللہ دکھائیں تو پھر ہم مانیں گے. موسیٰ آپ کو تشابہت قلوبہم, ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. ملتے جلتے مطلب کیا؟ مینٹیلٹی, سوچ, نظریات. حالانکہ ڈفرینٹ زمانوں کے لوگ ہیں, لیکن دیکھیں ایک ہی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دل ملتے جلتے ہیں. جب دل ایک جیسے ہوں تو پھر باتیں بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں, عمل بھی ایک جیسے ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی زمانے کے لوگ ہوں. ہم کہتے تو بہت ہیں ہم بہت ایڈوانس زمانے کے, 21st century کے, وہ تو پرانے زمانوں کے لوگ, لیکن آج بھی وہی باتیں ہوتی ہیں جو اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے. آج بھی جن کے دل ان کے جیسے ہیں وہ انہی جیسی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو زمانے گزر گئے, سینچریز گزر گئیں, لوگ آئے چلے گئے, اور یہ پھر بھی ان جیسی باتیں کر رہے ہیں. وہ آگے ان کو بتا کے تو نہیں گئے, مگر کیا بات ہے, کیونکہ دل جب فاسقوں جیسے ہوں, کافروں جیسے ہوں, تو باتیں بھی وہی کریں گے. تو دلوں کی بات ہے, اس کا مطلب دل صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. قد بینا الآیات لقومی یوقنون, تحقیق بیان تو کر دی ہم نے آیتیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. تم آیتیں مانگتے ہو, تم کہتے ہو کوئی نشانی لے کر آؤ, آیات تو آ گئی ہیں. اور وہ کون سی آیات ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو تھا وہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیا, یا لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی, یا یدِ بیضا, یا یہ نہیں تھے معجزے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے؟ اس لیے کہ اگر ایسا معجزہ دیا جاتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ایسا معجزہ دیا گیا جو رہتی دنیا تک قائم رہے, کیونکہ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے. تو معجزہ تو کوئی ہونا چاہیے نا جو قیامت تک کے لیے چلے, اور وہ ہے قرآن. آج اس کو ٹیسٹ کر لے, کوئی اٹھا لے, کوئی یہ کہہ نہیں سکتا اس میں یہ والی بات غلط. کئی باتیں لوگوں کو آج پتہ چل گئی, کئی باتیں اس کے راز ہیں جو ابھی تک نہیں پتہ چلے. تو وہ اب اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کلام نہیں کرتا کہ ہر ایک بندے کے ساتھ اللہ کلام کرے اور اس کو بتائے کہ ہاں بھائی یہ سچ ہے. اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اب کوئی نشانی اور اتارنی, نہ ہی کوئی اور معجزہ آئے گا. یہ معجزہ کافی ہے, لیکن یہ کس کے لیے؟ ان کو لیے جو یقین رکھتے ہیں. جس کو یقین ہی نہ ہو, دیکھیں اگر آپ یقین نہیں ہے تو آپ دوائی بھی کھائیں گے, نہیں اس سے نہیں مجھے کوئی فائدہ ہوگا, نہیں یہ نہیں کام کرے گی, تو وہ واقعی نہیں کرے گی. یقین کے ساتھ جو دیکھے گا تو انہی آیات کے اندر اس کو نشانیاں نظر آئیں گی کہ یہ معجزہ ہے. ایک ایک آیت معجزہ ہے, اللہ کی نشانی ہے. इन्ना अरसलना का बिलहक बशीर व नदीरा, ए नबी हमने तो आपको हक के साथ भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला। ये आयत इसलिए आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनकी ये बातें सुनते थे ना कि कैसी कैसी ये बातें करते हैं, क्यों ऐसे करते हैं, और इतनी हिर्स थी उनको कि ये ईमान ले आए, तो ए नबी आप नहीं इस चीज के ऊपर इतना गम करें। आपको अल्लाह ने किस लिए भेजा है कि आप इनको हक के साथ भेजा है। हक का माना यहाँ पे ये भी हो सकता है कुरान, ये भी हो सकता है दीन इस्लाम, ये दे के भेजा है ताकि आप लोगों को बस पैगाम दे दें, जो ईमान ला के साले अमल करें उनको खुशखबरी दे दें, जो नहीं मानते उनको डर सुना दे, ये आपका काम। वला तुसअलु अना असहाबिल जहीम, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा इन्होंने क्यों नहीं माना, ये क्यों जहन्नमी बने, कोई जहन्नम में जाता है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा आपने क्यों इसको जाने दिया, क्यों नहीं इसको आपने मनवाया, ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ पैगाम दे देना है। देखें रसूल दारोगा नहीं होते, वो जबरदस्ती लोगों को इस तरफ नहीं लाते। लोग कहते हैं ना इस्लाम तो तलवार से पहला ही है, आप तो हमारे कुरान में देख रहे हैं जो ये कहता है कि हमारे नबी को भी ये था कि आप सिर्फ खुशखबरी सुनाने वाले और डर सुनाने वाले, इसके अलावा किसी को भी जबरदस्ती दीन में लाना, ला इकराह फी दीन, इस दीन के अंदर किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता, ये है ही नहीं हमारे दीन के, ये पॉलिसी ही नहीं है। तो उड़ाई नहीं है ये बातें, उन्होंने लोगों को तलवारें दिखा दिखा के पता नहीं उसको उनको मुसलमान कर लिया था। तो आपसे तो यानी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अगर कोई जहन्नुम में जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। इससे एक दाई दीन को ये समझना चाहिए कि पैगाम देना, हक पहुंचाना, ये हाँ किसी दाई दीन की जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन इससे आगे के लोग क्या कर रहे हैं, उनकी खोज लगाना, उनके पीछे पड़ जाना, उनका राज अफशा करना, ये आपका काम नहीं है। आपने बता दिया, दैट्स इट, आपकी जिम्मेदारी इतनी ही थी, ठीक है। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, अब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट बता दिया गया, हरगिज नहीं आपसे राजी होंगे यहूदी और नसारा, हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहां तक कि आप इनकी मिल्लत की पैरवी कर लें, आप इनके तरीकों पे आ जाएं तभी आपसे खुश होंगे। सुन लिया आपने भी खान खोल के। तो हम अक्सर लोगों को ये ख्वाहिश होती है या चाहत होती है कि हम किसी तरह असिमिलेट कर लें, हम इनके अंदर गुल मिल जाएं, ये हमसे खुश हो जाएं, तो वो आपसे तो नहीं खुश होंगे जब तक कि आप उनके तरीकों पे ना आ जाए, उनके जैसा पहने, उनके जैसा खाएं पिए, उनकी तरह रहें सहें, उनके वाले अकीदे अपना लें, तब वो आपसे खुश हो सकते हैं, यानी आप अपने दीन को छोड़ दें तो तब खुश हो सकते हैं, इससे पहले नहीं खुश होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इसलिए कहा गया कि ये यानी ये किसी तरह ये ईमान ले आए, इसके लिए कहा गया कि आपसे ये राजी नहीं होंगे, लेकिन इनके दिल में तो हसद है ना, अब हसद इतना ज्यादा है तो ये तो नाराज ही रहेंगे, इसी तरह आप इनको नहीं मना सकते कि ये इस्लाम ले आए, इस दीन में आ जाए, ये तो सिर्फ एक बात के ऊपर ही खुश हो सकते हैं, तो आप इनके लिए परेशान होना छोड़ दें। यानी उनको तो ये कहा गया, हमें तो दीन फैलाने का नहीं शौक होता, हमें ये होता है कि वो हमें किसी तरह एक्सेप्ट कर लें, किसी तरह एक्सेप्ट कर लें, किसी तरह ये हमसे खुश हो जाएं और हमें ऐसी नजरों से ना देखें और हमें वैसी नजरों से ना देखें और हमारे साथ बड़े अच्छे हो जाएं, तो वो तो तभी अच्छे हो सकते हैं जब आप अपना दीन छोड़ के उनके जैसे बन जाए, और आप देखते हैं कि जो जैसे वैसे बन जाते हैं उनके साथ वो सही, तो क्या इंसान अपने दीन का सौदा करना चाहेगा। कुल इन्ना हुदल्लाही हुवल हुदा, याद रखो हिदायत तो वही है जो अल्लाह की हिदायत है, हिदायत का रास्ता सिर्फ यही है जो अल्लाह ने रखा, ये हिदायत के ऊपर नहीं है, वो सही रास्ता नहीं है, और अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमा दिया, अब जब हम पढ़ेंगे कि वमई अब तक गैर इस्लामी दीन फनई युकबल मिनहु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर आया तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा, वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। तो जो चल पड़े इनके रास्ते के ऊपर ये सोच के कि हाँ यही सही है, तो नहीं, अब अल्लाह ताला की तरफ से कोई दीन काबिल कबूल नहीं है जब इस्लाम आ गया। साफ तौर पे वहां पे बता दिया गया, वला इन तबाता वाहुम, और अलबत्ता अगर आप पैरवी करेंगे इनकी ख्वाहिशात की, बाद अल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, इसके बाद के आपके पास इल्म आ गया, मालक मिन अल्लाह मिन वली वला नसीर, आपका कोई फिर मददगार नहीं होगा और ना ही कोई दोस्त होगा अल्लाह के सिवा, अल्लाह से बचाने वाला, यानी मिन अल्लाह, अल्लाह से बचाने वाला, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं होगा। मिन दूनिल्लाह भी कई जगह आता है, लेकिन यहाँ पे मिन अल्लाह, अल्लाह से बचाए जो आपको। तो क्या बात कही जा रही है, असल में जो आपको लग रहा है ना कि आप, कहा जा रहा है ए नबी अगर आप पैरवी करें, ये कहा जा रहा है ए नबी अगर आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करें, इसके बाद के आपके पास आ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं जाना था इनकी रास्ते को, ना इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करनी थी, फिर क्यों कहा गया? इसलिए कि जब बात कोई बहुत शदीद कहनी हो ना, तो फिर क्या कहा जाता है, बड़े को कहा जाता है, किसी बड़े को, किसी, जैसे आप अपने मसलन आपने सबको रोकना है, तो आप अपने लाडले बच्चे को बुला के कहते हैं बस तुमने ये किया ना तो देखना फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, यानी अब सबको आपने सुना दिया कि अगर इसकी ये चीज इससे नहीं बर्दाश्त होगी तो बाकी सबसे कैसे बर्दाश्त होगी, फिर बाकियों ने किया तो उनका क्या हाल होगा, अगर लाडले को ये कहा जा रहा है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए कहा जा रहा है, ये नहीं कि आपने करना था, इसलिए कहा जा रहा है कि सुन लो लोगों, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा करेंगे, मैंने इतनी बड़ी हस्ती, अगर अगर, जो कि उनने नहीं करना, लेकिन अगर वो भी ऐसा करें तो उनके लिए भी अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं, तो तुम्हें कौन बचाएगा अगर तुम इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करते हो, जैसे वो खुश होते हैं, इनके जैसे बन जाओ, इनके जैसे बोलो, इनके जैसे पहनो, क्रिसमस आ रही है तो वो मना लो, वैलेंटाइन आ रहा है तो वो मना लो, जैसे वो है वैसे ही हम भी बन जाए ना, उनकी नजरों में जस्ट जाए। अल्लाह ताला ने तो आगे फरमाया क्या तुम इनके पास जाते हो इज्जतें लेने के लिए, फइन्नल इज्जत लिल्लाह जमीअ, इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए सारी की सारी, वो इज्जत देने वाला, तुम इनसे इज्जतें चाहते, हमें इज्जत मिल जाए, हमारा कोई स्टेटस हो जाए। तो देखिए इंसान या कभी खौफ खाता है ना तो तब उनकी ख्वाहिशात के बीच कि जैसे ये है वैसे हो जाए ताकि हम सेफ हो जाए, तुम्हारा तो कोई दोस्त और मददगार ही नहीं रहेगा अल्लाह से बचाने वाला, फिर दुनिया में भी चाहोगे ना मुश्किल में फंस जाओगे कि कोई मदद के लिए आए तो कोई बचा नहीं सकेगा तुम्हें, अल्लाह की गिरफ्त से तुम्हें कौन बचाएगा, कौन अल्लाह की पकड़ से बचाएगा, तो फिर किसको वली बनाना है, किसकी ख्वाहिशात पे चलना है, किसके पीछे जाना है, हमने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया ना कि बस ये खुश हो जाए और ये खुश होते हैं इस तरह कि हम इन जैसे बन जाए, तो उनकी ख्वाहिशात पे चले ना, उनकी ख्वाहिश तो यही है कि आप उन जैसे बन जाए, अपना दीन छोड़ दें, अभी बताया ना वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब, यही तो पहली आयत पढ़ी, उनकी चाहत क्या है, उनकी चाहत ये है कि ये दीन वीन अपना छोड़ो, छोड़ो सब कुछ ये जो तुमने शुरू किया था, ऐसे हमारे जैसे बनो, तो फिर उनकी ख्वाहिशात पे चलेंगे। मिम बादी मिम बाद अल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, इसके बाद के तुम्हारे पास इल्म आ गया, कुरान आ गया, सुन्नत का इल्म आ गया, इसके बावजूद तुम उनकी ख्वाहिशात पे चलना चाहते हो, तो ये और ज्यादा भी बुरी बात है कि जब इल्म आ जाए फिर भी आपको उनके ही तरीके पसंद है, फिर भी वही रास्ता आप चुनते हैं, बहुत बड़ी वईद है। देख लें जिसको अल्लाह छोड़ दे उसका कोई ठिकाना रह जाएगा, हम कहें कोई मिसाल के तौर पे किसी बच्चे को उसके वालदैन कहें कि मैं इसको छोड़ रही हूँ, बाहर डाल आए सड़क के ऊपर, अब मेरा इसके साथ कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, वो उसके लिए कितना बड़ा रंज होगा। अल्लाह का कोई बंदा जो जानता है अल्लाह की जात को, वो ये सुन ले कि अल्लाह कह रहा है मैंने इसको फिर छोड़ दिया, फिर अल्लाह का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ना उसका अल्लाह से बचाने वाला कोई दोस्त होगा ना कोई मददगार होगा, यानी अल्लाह ताला ने उससे मुंह मोड़ लिया, तो सोचें कि उसके लिए कितनी ये बड़ी आफत की बात है, सिर्फ इन लोगों को खुश करने के लिए उनकी ख्वाहिशात पे हम चलें और अल्लाह को नाराज करने, सब चीजें अगर उनकी पसंद आती हैं और उनके जैसे ही रहना और बनना चाहते हैं, अल्लाह के तरीके बैकवर्ड लगते हैं, उसके रसूल की बताई हुई बातें वो आउटडेटेड लगती हैं, सुन्नतें जो हैं वो अस्तग़फिरुल्लाह बैड मैनर्स लगती हैं और दूसरों के तरीके लगते हैं कि ये मॉडर्न है, ये आज के मुताबिक है। तो क्या सोच है हमारी? जैसी सोच होगी फिर वैसे ही अमल होगा ना। मुतासिर किससे हैं, किससे इम्प्रेस्ड है हम? इम्प्रेस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से या इनके तरीकों से? तो ये सब कुछ सबको पता है हम किससे इम्प्रेस होते हैं। जिससे इम्प्रेस है ना दिल में, जिनकी धाक दिलों में बैठी हुई है, फिर काम भी वैसे ही होंगे, कहीं ना कहीं होंगे जरूर वैसे। अल्लदीना आतैना हुमुल किताब यतलूनहू हक्का तिलावती, वो लोग जिनको दी गई दी हमने किताब, वो तिलावत करते हैं हक्का तिलावत ही, उसकी तिलावत का हक अदा करते हैं। तिलावत का हक क्या है? क्योंकि आगे क्या बात आ रही है, इसलिए ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि हक्का तिलावत ही क्या है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया उलाई का युमिनून भी, वही लोग हैं जो इस पर ईमान भी रखते हैं। फिर जिनको किताब दी गई वो तिलावत करते हैं उस किताब की, उसका हक देते हुए, ऐसे ही लोग उसके ऊपर ईमान रखते हैं, ये मतलब है। यानी इसका मतलब है कि जो हक का तिलावत ही नहीं करते वो उसके ऊपर ईमान का दावा है लेकिन ईमान नहीं रखते, फिर चाहे वो कहते रहे मुंह से कि हम ईमान रखते हैं। तो हक का तिलावत ही क्या है? हक का तिलावत ही ये है कि तिलावत, यानी तिलावत का वैसे माना क्या है? तला यतला यतलु तिलवन, यानी फॉलो करना है। वल्कमरी इदा तलाहा, चांद फॉलो करता है। तो तिलावत में पहली चीज क्या है? सही से पढ़ना। नंबर टू क्या है? उसके माने को फॉलो करना। नंबर थ्री क्या चीज है? अमल में उसको फॉलो करना। यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं इसको हक क्या है कि जब हम पढ़ें तो सही पढ़ें, जब हम इसकी समझें तो उसको भी वक्त दें और इसको सही समझें। नंबर थ्री क्या है? इसके ऊपर फिर अमल भी करें, तब बात है हक का तिलावती, तब आपने हक अदा किया इसकी तिलावत का। वरना तो हक ही क्या अदा किया, पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे। कई हैं जो पढ़ना ही सही नहीं जानते, इतनी गलतियां अंदर, लेकिन परवाह नहीं है। कई हैं पढ़ना सही जान गए लेकिन माना पता ही नहीं है कि क्या है, कुरान पे कुरान खत्म हो रहे हैं। कई हैं ठीक है माना भी रट लिया, उन्होंने टेस्ट में भी फुल मार्क्स दे रहे हैं लेकिन अमल की कोई परवाह नहीं, वो ला यालमून की तरह ही है, अमल में बिल्कुल कोरे, पता ही नहीं चलता इन्होंने कुरान पढ़ा भी है या नहीं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने तिलावत का हक अदा नहीं किया। तिलावत का हक अदा करने वाला वही है जो इन तीनों बातों को सामने रखता है। वो लोग ईमान रखते हैं इसके ऊपर, इस किताब पे। अब आप सोच लें कि हम सब कहते हैं हम इस किताब के ऊपर ईमान रखते हैं, लेकिन अगर हमने हक का तिलावत ही नहीं किया तो हमारा ईमान तो नहीं है फिर। इस जुबानी दावा है, सिर्फ सिर्फ जुबानी दावा, और हम इस पे मुतमईन है और आज तक मुतमईन रहे हैं कि नहीं जी हमारा तो कुरान पे ईमान है। मेरा आप ये बताइए कि आज मुस्लिम उम्मा में कितने लोग हैं जो हक का तिलावत ही करते हैं? जुबानी सबके दावे हैं कुरान बेहतरीन किताब, कुरान मोजा, कुरान ला, कितनी मर्जी इसकी तारीफें सुन लो, लेकिन वो तो आपके अमल से पता चलता है आप कुरान को कितनी बड़ी चीज समझते हैं, क्योंकि आपको उसकी परवाह भी नहीं। कल ही एक वीडियो देखी जिसमें इतनी अच्छी बात उन्होंने कही की थी। देखें 16 साल पढ़ते हैं, 12-14 साल पढ़ते हैं, लेकिन इतने सालों पढ़ने में भी एक दफा भी किसी एक पारे का तर्जुमा, एक पारे की समझ हमें नहीं होती। मास्टर्स कर लेते हैं, पीएचडीज कर लेते हैं, एक सिपारा भी समझ के नहीं पढ़ा होता। किसी सिलेबस में कुरान नहीं है, जो अल्लाह की किताब है वो किसी सिलेबस में नहीं है। एलिमेंट्री देख लें, हाई स्कूल देख लें, कॉलेज देख लें, कहीं नहीं, उसमें कोरे ही रहते हैं। और दावे हमारे इतने बड़े बड़े हैं कुरान के बारे में कि कुरान ऐसा, कुरान तो हमारा ये, कुरान तो हमारा कभी नहीं बदला, वो तो अल्लाह का कलाम है। पूछ लें कितने बड़े बड़े कलाबे मिलाएंगे हम, तो उसके बाद क्या है? कुरान की तरफ क्या तवज्जो है, उसको पीठ पीछे डाला हुआ। وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ایمان نہیں رہتا وہ کفر ہی ہے نا، تو جو کفر کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ خسارہ پانے والے ہیں. کہاں؟ یہ نہیں بتایا گیا، اس لیے کہ ان کا خسارہ دونوں جگہوں پہ ہے، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں تو بہت بڑا خسارہ ہے. اس لیے کہ یہ قرآن کھڑا ہو کے کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے پس پشت ڈال دیا تھا، یہ قرآن کہے گا، قرآن گواہی دے گا خلاف یا حق میں، آئیدر ون. اگر تو اس کو آگے رکھا ہوگا، امام بنایا ہوگا، اس کو فالو کیا ہوگا، امام کو فالو کرتے ہیں نا، جیسے 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 کر رہا ہوتا ہے ویسے ہی ہم پیچھے پیچھے کرتے ہیں، اسی طرح اگر قرآن کو فالو کیا، جیسے جیسے یہ کہتا گیا ویسے کرتے ہیں، تب تو یہ حق میں گواہی دے گا، اللہ کے آگے سفارش کھڑا کرے گا کھڑا ہو کے، اس کی ایک صورت ہوگی. لیکن اگر اس کو پیچھے ڈالا تو یہ خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. سوچیں جس کے خلاف اللہ کا کلام گواہی دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کی ہر چیز سوائے اللہ کی ذات کے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ عرش ہے، چاہے وہ آسمان ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، ویل مچھلیاں ہیں، یا کوئی بھی پلانٹس ہیں، کوئی بھی سٹار ہے، سب مخلوق ہے. ایک چیز ہے اس کائنات میں جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ ہے قرآن. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کے ورڈز ہیں. مخلوق سب پیرش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مخلوق کو موت ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کلام جب بولے گا، یہ کلام سوچیں یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ جب گواہی دے گا خلاف، تو وہ بندہ کوئی بچے گا؟ اور ہم دعوے تو ایمان کے کرتے ہیں، اس کے بعد حق کا تلاوت ہی کی کوئی خیال ہی نہیں. جب یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ایمان والا ہے ہی وہ جو حق کا تلاوت ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یہاں پہ جا کے اب ختم ہو رہا ہے وہ پورشن جو پورا کو پورا بنی اسرائیل کے بارے میں تھا. میں ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں اگر ٹائم ہوگا کہ کیا اس میں ہے، کہ یہ جو آیت 45 تھی وہاں سے سٹارٹ ہوا اور یہاں پہ یہ مکمل ہوا بنی اسرائیل کی ساری باتیں، کہ انہوں نے ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، اے امت مسلمہ تم ایسے نہ کرنا. اب پھر کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیے. کیا ہونا چاہیے رویہ انسان کا؟ ویسے بنی اسرائیلی نہیں، ہم بھی بھول گئے کہ ہم پہ اللہ نے نعمتوں کی بارشیں کی ہیں، اور شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ انسان نعمتوں کا ذکر کرتا ہے. آپ نا ذرا ایسا کریے، اپنا ہوم ورک لکھیں، ہوم ورک لکھیں کہ اس ہفتے میں آپ اپنے آپ کو چیک کریں گی کہ میں کتنی باتیں نعمتوں کی تذکیر کی کرتی ہوں، نعمتوں کا ذکر کرتی ہوں، اور کتنی میری زبان پہ شکایات رہتی ہیں. یہ ذرا آپ نے نوٹ کرنا، ہر دن کا الگ الگ نوٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ کا ہوم ورک ہے. اب یہ نہ ہو کہ ہوم ورک مل گیا تو اس لیے اپنی زبان کو بہت کنٹرول کریں، لیکن پتہ چل جاتا ہے انسان کو جب زبان پہ آنے لگتی ہے، آپ نے اپنے آپ کو روکا اگر تو تب بھی لکھ لیں. اگر یہ ہوم ورک نہ ملا ہوتا تب تو آپ بول دیتی، ہائے گرمی بڑی ہے، ہائے یہ ایسا ہوتا تو پھر اچھا تھا، یہ فلان چیز ایسی کیوں نہیں ہوئی، یہ فلان چیز نہیں مجھے ملی، فلان چیز ایسی کیوں ہے. دیکھیں یہ ہے ناشکری کے کلمات. او یہ جو تھا یہ اس طرح اچھا تھا، یہ ایسے ہو گیا نا اب نہیں اچھا لگ رہا، ایسے ہوتا تو مزیدار تھا، ایسے ہے نا تو ایسے نہیں چاہیے. یہ سب ناشکری ہیں، یعنی جو میرے پاس ہے، جو مجھے مل گیا، اس کے اوپر کوئی گریٹیچیوڈ نہیں ہے، اس پہ کوئی اللہ کے آگے جھکنا یا اس کی تعریف یا اس کا شکر نہیں ہے. ہاں ویسا ہوتا نا تو پھر ٹھیک، اب وہ ویسا تو ہوا نہیں تو اب کوئی شکر گزاری نہیں. یعنی جو مل جانا اس کے اوپر کبھی نہیں آگے بول شکر کے ادا کرنا، بلکہ ہمیشہ زبان پہ وہی بات رہنی جو نہیں ملی. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا بڑے شکر گزار ہیں. آپ اس سے نوٹ کریے گا کہ کتنی ناشکریہ ہماری زندگی میں، حالانکہ ہمیں بے شمار نعمتیں ملی، لیکن ناشکری ہم سے جاتی ہی نہیں ہے. تو ذرا کمپیریزن کریے گا کہ کتنا میں کیا بولتی ہوں، शुक्र गुजारी वाले कलिमात ज्यादा बोलते हैं या नाशुक्री वाले कलिमात ज्यादा बोलते हैं? खाना सामने आया तो उसके अंदर एक मसला है, तो कहीं चले गए तो वहां पे एक मसला है, कोई कपड़े हैं तो उनके अंदर एक मसला है, कोई बच्चों की कोई बात है तो उसके अंदर मसला। हर चीज के अंदर आप देखिएगा कि हमें हमेशा एक ये चीज रहती है कि ये ऐसे नहीं हुआ। वो जो ऐसे नहीं हुआ ना, वो उसकी कसक ज्यादा है, और जो मिल गया है उसके ऊपर कब शुक्र आएगा? फिर उसके ऊपर कभी शुक्र आएगा ही, क्योंकि मुझे तो मुकम्मल नहीं मिला जैसा मैं चाहती थी। तो देखें, सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं, क्योंकि ये मैं आयत पहले समझा चुकी हूं, इसलिए एक और एंगल से आज आपको बता रही हूं। अपने लिए भी, खुदा के लिए नेमतों को कहें कि ये नेमतें हमारे ऊपर हुई, अपने बच्चों को बताएं, अपने घर वालों को बताएं, ये देखो ये हमारे ऊपर, बार बार इसका जिक्र करते रहे। एक दफा बताना काफी, बार बार जिक्र करें कि अल्लाह ताला ने मुझे हमें क्या क्या नेमतें दी। और ये सिर्फ जुबानी नहीं होना चाहिए कि जुबान सिर्फ लिप सर्विस हो रही है, लिस्ट एक बयान कर दी, नहीं, ये तो दिल से होना चाहिए। नेमत का एहसास उसी को होता है जिसमें आजजी होती है, यकीन जाने जिसमें तकब्बुर होता है उसको कभी नहीं नेमत का एहसास होता। जिसमें आजजी होती है ना, और वो कहता है अल्लाह मैं तो इसके काबिल भी नहीं था, तूने मुझे ये दे दिया इतना। अब आप क्या कहेंगे, मतलब ना ये कपड़ा, ओ ये ऐसा होता तो अच्छा था, ये ना बस बस पड़ा, इसके अंदर ये चीज नहीं चाहिए। अगर आपको ये एहसास होगा ना, अल्लाह मैं तो इस काबिल भी नहीं थी, तूने मुझे ये दे दिया, तो कहां से शिकायत आएगी? लेकिन जिस वक्त हम कहते ना ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, इसका मतलब है आजी नहीं है। यानी मैं ये वाला एहसास नहीं है कि मैं इस काबिल नहीं थी, ये एहसास है मैं तो इस काबिल थी कि मुझे वो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला ना मुझे। यानी आप अपने आप को कितनी बड़ी चीज समझते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो बताती हैं कि इंसान के अंदर कितने बड़ाई के एहसास आते हैं। बचाई अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ये अता किया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने। हाँ, आगे बढ़ के जैसे आप देखते हैं, अल्लाह अकबर, हमसे बच्चे अच्छे हैं, आप देख रहे हैं बच्चे को, अच्छा आप एक लॉलीपॉप ही निकालेंगे, ऐसे करके उसको ऐसे लेते हैं, वो क्या है? दैट इज ग्रेटिट्यूड, दैट इज शुक्र गुजारी। आप एक पेंसिल निकालते हैं उसको, हाँ, एक टीचर बहुत छोटी छोटी चीजें उनको दे देती है बच्चों को, वो किस तरह लेते हैं? गुडी बैग में क्या होता है? इतनी छोटी छोटी मामूली सी चीजें होती हैं, कैसे लेते हैं उसको? एक बच्चे की तरह बन जाए अल्लाह के आगे, अल्लाह तूने मुझे ये दे दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। उस पे कुछ क्या होना, हमारे तो दुख ही नहीं खत्म होते कि फलां चीज नहीं मिली थी, ये तो मिल गया, हाँ लेकिन वो तो नहीं ना मिली। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें माफ करे इन रवैयों के ऊपर। और फिर हमें जब नेमत छिनती है तब याद आता है, लेकिन फिर लेट हो गया होता है ना। क्या हम शुक्र गुजार बनने के लिए ये चाहते हैं कि हमसे नेमतें छीनी जाए तब शुक्र शुक्र करेंगे? नेमत ही अल्लती अनाम तो अलैकुम, मेरी नेमत को तो याद करो जो मैंने इनाम की तुम पे। क्या इनाम की थी नेमत? इनको रोल मॉडल बनाया, इनको इमाम बनाया। अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और बेशक मैंने फजीलत दी तुमको तमाम जहान वालों पे, फजीलत दे दी। जो जो चीजें इनको दी किसी और को नहीं दी। कैसे जहान वालों पे फजीलत दी? बादशाह इनके अंदर थी, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बादशाह थी कभी नहीं किसी को मिले, सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी खास तौर पे। वो इनमें अता फरमाई, अल्लाह ताला ने बादशाह भेजे, अंबिया भेजे, इनको वो चीजें दी जो किसी और को नहीं दी थी। वत्तकु यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, लेकिन ये अपने आप को क्या समझते थे? वी आर द रॉयल ब्लड, आज तक ये समझती, आज तक कहते हैं कोई यहूदी नहीं बन सकता, क्योंकि यहूदियत जो है ना वो मतलब बहुत ये रॉयल है। तो याद रखो, एक दिन ऐसा आने वाला है, कोई किसी को डरो उस दिन से, जो कोई किसी को काम नहीं आएगा। वला युकबलु मिनहा अदलु, कोई बदला किसी से कबूल नहीं किया जाएगा। वला तनफाउहा शफाअत, और ना नफा देगी शफात। शफात तो होगी, आप जैसे आयतल कुर्सी में पढ़ते हैं, शफात तो होगी लेकिन अल्लाह के इज़्ज़त से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शफात करेंगे अल्लाह के इज़्ज़त से, तो लेकिन कोई जान ऐसे नहीं कि अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर किसी को छुड़ा के ले जाए। तो बात तो फिर वही हुई ना कि जब अल्लाह का इज़्ज़त ही होगा तो फिर अदरवाइज लेकर आओ कोई वली, लेकर आओ कोई नसीर, लेकर आओ कोई बदला। बदला यानी मैं इतने पैसे दे देती हूँ मुझे छोड़ दें, कोई सिफारशी बुला लेते हैं आप, या कोई मददगार, कोई यूनसर हूं, कोई जो मदद भी नहीं ये किए जाएंगे, कोई कोई फौज नहीं आ जाएगी इनके लिए, कोई इनके गार्ड्स नहीं आ जाएंगे, कोई इनके फैंस नहीं आ जाएंगे जो इनको छुड़ा के ले जाएं, कोई नहीं ऐसा होगा। ये जो सारे दुनिया के सहारे हैं ना, कमजोर हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने जो मनसब और जो मकाम तुम्हें दिया उसको पहचानो और इस नबी पर ईमान ले आओ, उनके लिए तो ये है, बाकी सबके लिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वत्तकू यौमल्ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। तो फिर किसी और से क्या डरना, कोई भी मेरे काम नहीं आ सकता, कोई भी मेरे बदला नहीं मेरी जगह पे अपने आप को दे सकता बदले में, कोई मेरी सिफारिश नहीं कर सकता, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, तो क्यों ना उससे ताल्लुक जोड़ू जो ये सब कर सकता है, और वो सिर्फ अल्लाह की जात है जो मुझे उस दिन की रसवाई से छुड़ा सकता है, बचा सकता है उस दिन के अजाबों से। तो ये यहां तक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अब यहां पे खत्म हुआ बनी इसराइल का जिक्र। अब थोड़ा सा इसको मैं समराइज करना चाहती हूँ आपके सामने, सिर्फ 2 मिनट में इंशाल्लाह ताला, कि आपको पता चले कि हम सूरह बकरा जब हमने शुरू की तो हमने वो 3 ग्रोहों की बात पढ़ी थी, राइट। अब उन 3 ग्रोहों के अंदर हमने देखा कि मुत्तकीन है, काफिर है और मुनाफिक है, और हमने देखा 1 से 20 तक आयात उस सिलसिले के अंदर आई जिसमें हमें बताया गया कि देखो ये 3 ही ग्रोह हैं दुनिया के अंदर, इन 3 में से अपने आप को चूज कर लो कि तुम किसमें होगे। फिर हमने देखा अल्लाह ताला ने बताया कि मैंने तुम्हें जमीन में क्यों भेजा, खलीफा बना के भेजा, इंसानियत इंसान तेरा मकसद ही है कि तुझे भेजा ही गया इसलिए कि अल्लाह ताला जमीन में अपना खलीफा बनाना चाहता था। अब खलीफा के बाद पहली स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी आई है आदम अलैहिस्सलाम की, जो हमने तकरीबन 30 से 39 तक पढ़ा, और उसके अंदर हमने देखा कि एक यानी वो एक एक पहले खलीफा जो अल्लाह ताला ने भेजे जमीन के ऊपर वो आदम अलैहिस्सलाम थे, उनसे गलती हुई और उन्होंने अपनी गलती को कैसे फिर रेक्टिफाई किया कि तौबा की, उनका एक रवैया बताया, ठीक है। उसके बाद एक कौम का जिक्र आया। अब जाहिर है जब इंसान बढ़ेंगे, जब ज्यादा लोग हो जाएंगे, तो एक पूरी कौम चाहिए खिलाफत के लिए, तो इस कौम को इमाम बनाया। फिर पहले कौन थे, आदम अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद किस कौम को इमामत का दर्जा दिया, वो थी बनी इसराइल की कौम, और उनका जिक्र हमने फिर देखा कि यहां पे आके खत्म होता है, 40 आयत से शुरू हुआ और 123 पे खत्म हुआ। हमने देखा आदम और हव्वा का किस्सा कि वो एक्सपेरिमेंटल थे, एक मॉडल थे एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, और खिलाफत का उनको दिया गया, फिर उनसे वो गलती हुई और फिर क्या उन्होंने गलती को कैसे फिक्स किया। उसके बाद हमने देखा एक नेशन जो हमें दिखाया गया, अब ये गौर से सुने, जो हमें दिखाया गया कि जो फेलियर नेशन था, फेलियर नेशन, और उसने क्या क्या गलतियां की वो सारी 40 से 20 ये 123 आयत तक हमें बताएंगे। क्योंकि सूरह बकरा जो है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है, ये हमें बताएगी कि इंसानियत की लीडरशिप, उसकी इमामत, ये खिलाफत, ये मनसब अब जो उम्मते मुस्लिमा को दिया जा रहा है तो उनको उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है कि अब तुमने ये लीडरशिप, ये खिलाफत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ये चार्ज लेना है, और तुम इसके लिए कैसे चलोगे, क्या क्या इनको देखिए, आप किसी को कोई ओहदा देने लगते हैं तो फिर आप उसको बताते हैं ना कि भाई ये जिम्मेदारियां हैं, आपने ऐसे करना है, देखिए ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। उस सिलसिले में पहले उनको आदम अलैहिस्सलाम दिखाए गए कि जब वो आए थे उनसे गलती हो गई और फिर उन्होंने क्या किया। उसके बाद एक फेलियर नेशन दिखाया गया जिसको बताया गया कि देखो ये एक लाडली उम्मत गुजरी है जो तुमसे पहले गुजरी थी, जब इन्होंने ये काम किए तो अल्लाह उनसे ऐसा नाराज हुआ कि आज तक नाराज और जिल्लत और ख्वारी उनका मुकद्दर बन चुकी है, वो मग़दूब अलैहिम हो चुके हैं हमेशा के लिए, ठीक है। अब ये फेलियर नेशन बता के, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने एक रोल मॉडल दिखाया उम्मते मुस्लिमा को, कामयाब आदमी, और वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली, जो 124 से 141 तक हम देखेंगे। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि फिर अब हमें करिकुलम दे दिया गया उम्मत मुस्लिमा को, आपकी गाइडलाइन, आपका मनहज, आपका रास्ता क्या होना चाहिए।
अब उसके अंदर फिर आप देखेंगे सब आपको बताया जाएगा, नमाज, रोजा, हज, तलाक, रजात, रिबा, यानी शरीयत के अहकाम दे दिए जाएंगे। और एंड में हम अब इस करिकुलम को लेके कैसे चलें अल्लाह, ये तो बहुत हमारे लिए बड़ा बड़ी जिम्मेदारी है। तो 284 से 286 तक बता दिया गया कि फिर अल्लाह से कैसे दुआएं मांगो। दिस इज द समरी ऑफ द होल सूरा के ये आप लॉस्ट ना इसके अंदर हो जाए, इसलिए आपको बता रही हूँ। पहले एक बाप दिखाया गया और उससे गलती हुई, लेकिन उसने अपनी गलती को फिक्स किया। और उसके बाद एक नेशन दिखाया गया, एक पूरी उम्मत दिखाई गई जिनसे गलती हुई और गलतियां होती चली गई और वो बाज नहीं आए, उन्होंने इससे कोई इबरत नहीं पकड़ी। वो बाज आ जाते अगर ईमान ले आते फिर, लेकिन वो नहीं बाज आए। फिर एक कामयाब आदमी दिखाया और फिर उम्मत मुस्लिमा को कहा कि अब आपने किसकी तरफ देख के चलना है, समझ आई बात। और अगर वो फेलियर नेशन के रास्ते के ऊपर चलोगे, उनकी खराबियां तुम अपने अंदर कर लोगे, तो उनको तो फिर माजूल कर दिया गया ना, उनको तो हटा दिया गया उनके मनसब से। तकरीबन 2000 साल तक उनको ये मनसब मिला रहा और उन्होंने उसके बाद अल्लाह ने हटा दिया। अल्लाह के लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा लाडला है कि बस उसको ही लेना और दूसरा कोई और है जिसको कुछ किसी और तरह से ट्रीट करना, नहीं। अल्लाह का कानून सबके लिए सेम है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना? अच्छा, अगर अब एक क्वेश्चन है, अगर अब उम्मत मुस्लिमा वही ट्रैक अपना ले जो फेलियर नेशन का दिखाया गया है और बताया गया, कंडेम किया गया बार बार, उनको बार बार बताया गया कि ये सही नहीं है, देखो ये कैसे बुरे थे, देखो ये कैसे इन्होंने ये उल्टे काम किए, और वो पढ़ के और समझ के फिर भी वो कहें कि हमने यही करना है और उसी के ऊपर चलते रहे, तो उसके बाद वो इनाम याफ्ता होंगे। हाँ, उसके बाद ये तो मगदूब हुए, जिल्लत और ख्वारी इनके लिए हुई, तो वो जो अब चोजन वंस हैं जिनको अब फजीलत दी गई तमाम के ऊपर, जिनको इतनी बड़ी नेमत दी गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, और कुरान जो रहती दुनिया तक एक महफूज किताब, सेफ, जिसका एक एक हर्फ सेफ है और सेव्ड रहेगा, वो दी गई, तो अब वो भी वही फेलियर वाले काम करेंगे तो फिर क्या उनके ऊपर इनामात की बारिश होगी, रहमतें नाजिल होंगी या कुछ और होगा? हम समझ में आ रही है वजह अपनी जिल्लत और खारी की? कैसे हो सकता है कि रास्ता उनका अपनाओ और पहुंचो कहीं और? कैसे हो सकता है कि बीज वो डालो जो उन्होंने डाला था और फसल कुछ और निकल आए? सोचने की बात है, सोचिएगा इस पे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए इन आयात की।
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا